ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में हम देखेंगे मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन का पहला कदम। मेडिटेशन करने के लिए तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि स्वयं की निजी पहचान। स्वयं के बारे में जो अभी तक भ्रांतियां चली आई, रियल मी कौन है, तो यथार्थ परिचय खुद का, खुद के साथ। सेकंड स्टेप है परमात्मा का निजी परिचय, जो कल के राजयोग सेशन में आप सबको बताया जाएगा। और तीसरा स्टेप है कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, कैसे हम जोड़े। योग का अर्थ ही है कनेक्शन, जोड़, कम्युनिकेशन। वियोग का अर्थ है अलग हो जाना, बिछड़ना। तो यहां योग किसका, किसके साथ है। वैसे तो दिन भर हम किसी ना किसी को याद करते ही हैं, मन से हम किसी ना किसी के साथ कनेक्शन जोड़ते ही हैं, व्यक्ति के साथ या फिर वस्तु के साथ। व्यक्ति और वस्तु के साथ कनेक्शन जोड़ने से आत्मा सशक्त नहीं बनती और ही थोड़ा बहुत डिप्लीट होना शुरू हो जाता। लेकिन जब परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो आत्मा सशक्त हो जाती, अपने ओरिजिनल गुणों को अपने अंदर भर सकती है। लेकिन इसके लिए एक और नियम है, खुद का परिचय, जो अभी तक हमने अपने आप को समझा था, इससे और बढ़कर के कुछ और है, या फिर अभी तक जो हमने समझा था अभी वहां तक ही सीमित है। क्योंकि जब हम एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या क्या यूजुअली हम उस इंट्रोडक्शन में आता है, सबसे पहले आता है, जैसे बहन ने मेरा परिचय दिया, तो ये सारा जो परिचय था, नाम, क्वालिफिकेशन, मैं क्या करती हूं, ऑक्यूपेशन, ये सारा जो परिचय था केवल बाहरी परिचय था, केवल इस शरीर के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो परिचय था। तो इसीलिए जब भी हम परिचय देते हैं, नाम, पोजीशन, क्वालिफिकेशन, रिलीजन, जेंडर या फिर नेशनैलिटी, इसके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस आधार से हम अपना परिचय देते हैं। ये जो भी परिचय देते हैं वो सही है, गलत तो नहीं है, सही तो है, लेकिन इससे भी बढ़कर और परिचय भी है। क्योंकि ये जो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन चीजों के साथ, पोजीशन के साथ, ऑक्यूपेशन के साथ, क्वालिफिकेशन के साथ, या फिर फैमिली के साथ, मैं फलाने फैमिली के हूं, या फिर मेरा पोजीशन ये फलाना है, तो ये जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारा टेम्पररी आइडेंटिटी है या परमानेंट आइडेंटिटी है, क्या कहेंगे, टेम्पररी आइडेंटिटी है या परमानेंट आइडेंटिटी है। टेम्पररी आइडेंटिटी है, क्योंकि एक दिन उस पोजीशन से हमें रिटायर्ड तो होना पड़ेगा, एक्स होना पड़ेगा या फॉर्मर होना पड़ेगा, है ना। पोजीशन या फिर संबंधों के साथ जो आइडेंटिफाई करते हैं, मेरा फैमिली फलाना है, मेरा पिता फलाना है, तो या फिर संबंधों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, ये संबंध भी कभी ना कभी वो लोग हमसे दूर जरूर होंगे, क्योंकि ये लाइफ का जर्नी है, हमेशा सभी हमेशा हमारा साथ नहीं रहते हैं। एक जर्नी में, ट्रेन जर्नी में, अगर अपने अपने लाइफ जर्नी ट्रेन जर्नी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तो पैसेंजर्स तो आते हैं और अपने स्टेशन पे तो उतर जाते हैं, ये नियम है लाइफ का। तो परमानेंटली हम उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन आ जाता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा अस्तित्व नहीं है। वो व्यक्ति मेरे जीवन में आने से पहले भी मेरा अस्तित्व था, ये व्यक्ति मेरे जीवन से निकल जाने के बाद भी मेरा अस्तित्व है। वो अस्तित्व कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये टेम्पररी है, एक ना एक दिन ये सब कुछ हमसे बिछड़ने वाला है। और देखा जाए ये शरीर, क्योंकि जब भी हम अपने आप को देखते हैं तो एक फिगर, एक बॉडीली फिगर हमारे पास है तो इसके साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ये शरीर भी एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जब ये कोई किसी का मृत्यु होता है तो क्या कहते, शरीर तो वहां है लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये हमसे दूर चले गए, हमसे बिछड़ गए हैं। शरीर तो दिखाई दे रहा है लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो हमसे दूर हो गए हैं, हमसे बिछड़ गए हैं, क्या कहेंगे? उस शरीर में जो लाइफ फोर्स था, प्राण जिसको कहते हैं, या दूसरे शब्दों में जिसको कहे आत्मा, रूह या स्पिरिट, जो इस शरीर को प्राण प्रदान करने वाली ऐसे अनादि शक्ति है, वो हम आत्माएं हैं। ये दो बातें यहां हैं, एक है आत्मा या फिर प्राण और दूसरा है शरीर। हम शरीर है या फिर आत्मा है, क्या कहेंगे? आत्मा है या शरीर है? आत्मा है या शरीर है? जब हम फ्यूनरल अटेंड करते हैं तो स्मशानी वैराग्य आ जाता है ना, कि हाँ जीवन तो इतना ही है, बस एक दिन सबको जाना है। लेकिन फिर वापस आते हैं, दो दिन के बाद वही जिंदगी शुरू हो जाता है। वही हम जो एनर्जी दे रहे, समय दे रहे हैं, तो दिन भर किसके लिए हम समय और एनर्जी दे रहे हैं? इस शरीर के प्रति हम समय दे रहे हैं। खाना पीना, रेस्ट करना, कमाना, जो भी हम दिन भर कार्य कर रहे हैं वो शरीर के परवरिश के लिए, शरीर को देखभाल करने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। कमाना भी क्यों कमा रहे हैं? इस शरीर को चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान तो इस शरीर को चाहिए, तो इसके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या हम आत्मा के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि एक दिन इस शरीर को हमें छोड़ के जाना है, तो इस शरीर को भी हमें देखभाल जरूर करना है, लेकिन ये शरीर ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि जो हम जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, इसलिए कहते ना, क्या लेके आए थे और क्या ले जाना है, अकेले आए थे, अकेले जाना है। तो क्या लेके आए थे? अपने कर्मों का हिसाब किताब लेके आए थे, प्रारब्ध लेके आए थे, वही फिर लेके जाएंगे, है ना? तो कितना बड़ा बंगलो है मेरा, वो नहीं लेके जाएंगे। कितने अच्छी गाड़ियां, कितने गाड़ियां हैं, वो हम नहीं लेके जाएंगे। स्थूल चीज कुछ भी हम लेके नहीं जाएंगे, ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना फिर संबंध, संबंधियों को भी हम नहीं ले जा सकते हैं। तो केवल हम ले जाएंगे अपने कर्मों का प्रारब्ध। तो उसके लिए हम मेहनत क्या कर रहे हैं, उसके लिए पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, तो ये समझने की बात है। तो वो इसीलिए आत्मा पर फोकस करने की जरूरत है। आत्मा इस शरीर में कहां विराजमान है, यहां भ्रुकुटी के मध्य में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, ब्रेन के बीचों बीच आत्मा का विराज, वहां स्थान है आत्मा का। वैसे तो पूरे शरीर में उस प्राण का प्राण की महसूसता है, कहीं भी कुछ होता है तो दर्द जरूर होता है, हाथ में कहीं भी शरीर में कहीं भी कुछ होता है तो दर्द जरूर होता है। दर्द शरीर को नहीं, दर्द आत्मा महसूस करती है। आत्मा ही शरीर में निकल गई, डेड बॉडी को काटो पीटो कुछ भी करो, वो महसूस उसको कुछ नहीं होता, महसूस करने वाली वो आत्मा है। जैसे एक ड्राइवर कहां बैठता है गाड़ी में, कार में, जहां स्टीयरिंग है, जहां ब्रेक है, जहां एक्सीलेटर है, जहां कंट्रोलिंग पॉइंट्स है, वहां ड्राइवर को बैठना होगा। ड्राइवर कहीं बैक सीट पर बैठ करके वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे ही इस शरीर को कंट्रोल करने वाले ऑर्गन है ब्रेन, ब्रेन में वो विराजमान होकर के फिर ये सारे शरीर का कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में तिलक लगाने की प्रक्रिया है, जब भी हम पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, पहले तिलक लगा करके, पहले जब मंदिर में जाते हैं सबसे पहले जूता चप्पल बाहर उतार करके अंदर जाते हैं और तिलक लगा करके फिर हम पूजा करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है जूता चप्पल निकालना माना अपने शरीर के विभान को त्यागना, अपने आप को आत्मा समझना, तिलक लगाना माना अपने आप को आत्मा समझना, फिर परमात्मा को याद करना। और दूसरी बात यह है, जब भी हम भाग्य के बारे में कहते हैं मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हाथ यहां चला जाता है। तो भाग्य क्या यहां मेरे माथे पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, दिखाई देता है मेरा भाग्य कितना है? नहीं दिखाई देता। आत्मा में वो भाग्य रिकॉर्डेड है, कर्म का ही फल है भाग्य। तो आत्मा यहां विराजमान होने के कारण से फिर हम ये पता है, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ यहां चला जाता है भाग्य के बारे में जब जिक्र करते हैं। इसलिए आत्मा अनादि अविनाशी है, जिसका कोई मृत्यु नहीं है, मृत्यु केवल शरीर का है। जन्म किसको कहते हैं? आत्मा का शरीर में प्रवेश होना, इसको जन्म कहते हैं। मृत्यु किसको कहते हैं? आत्मा का शरीर से निकल जाना, इसको मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु किसके हुई? मृत्यु शरीर का हुआ। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसका कोई मृत्यु नहीं है। हाँ, केवल अपना कॉस्ट्यूम आत्मा बदलती है, शरीर आत्मा बदलती है, बस। आत्मा को आग नहीं जला सकता, पानी नहीं भिगो सकती, हवा उसको उड़ा नहीं सकती। तो मतलब उसका स्थूल चीजों का प्रभाव आत्मा के ऊपर ऐसे पड़ नहीं सकता है। इसीलिए आत्मा एक शक्ति है, अनादि अविनाशी, एक कॉन्शियंट पॉइंट ऑफ लाइट है। और आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध है? क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा का इस शरीर के साथ अटूट संबंध होता है। शरीर को कुछ भी हुआ उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ती है, आत्मा को कुछ भी हुआ उसका प्रभाव शरीर को पर पड़ता है। अगर शरीर को कुछ भी तकलीफ हुई, कुछ बीमारी या कुछ ऐसा दर्द हुआ, आत्मा महसूस करती है। आत्मा को जो दुख हुआ संबंधों में या फिर डिप्रेशन में आ गए, तो उसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देता है। तो इसीलिए अटूट संबंध है आत्मा का शरीर के साथ। लेकिन हम ये भी समझे किस रूप का संबंध है। वो अटूट संबंध तो है, लेकिन आत्मा एक मोती है और शरीर एक सीप है। सीप का कोई वैल्यू नहीं है, सीप केवल मोती को पकड़ने के लिए वो सीप बना हुआ होता है, लेकिन महत्व है मोती का। ऐसे ही गाड़ी भले कितना भी करोड़ों का हो, कितने भी एक्सपेंसिव हो, अगर वो गाड़ी चलाएंगे नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। ड्राइवर का महत्व है, ड्राइवर ड्राइव करेगा तो उस गाड़ी का महत्व है। ऐसे ही ये शरीर मेरी गाड़ी है, मैं आत्मा इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ। ये शरीर मेरा घर है, मैं आत्मा इस घर का मालिक हूँ। घर बनता ही है उन लोगों से, उसमें रहने वाले लोगों से, है ना। ऐसे ही मेरा शरीर रथ है और मैं आत्मा रथी हूँ। जब आत्मा निकल जाती है तो इसीलिए ना अर्थी लेके आओ, अर्थी लेके आए। अर्थी क्या है? वो ऐसा रथ जिसमें रति ना हो, वो अर्थी हो गया, है ना। ये मेरा राज्य है, ये आंख कान नाक, ये मेरा राज्य है, मैं आत्मा इस राज्य का राजा हूं। ये शरीर मेरा मोबाइल है, आत्मा सिम है। ऐसे आत्मा प्रोग्रामर है और ये शरीर रोबोट है। जो मैं करना चाहूं, हाथ उठाना चाहूं, करना चाहूं, कंट्रोल करने वाली मैं आत्मा हूं। तो ये संबंध है, मालिक आत्मा है, शरीर केवल मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरा सहयोगी है, मेरा राज्य है, उसको कंट्रोल करने वाली राजा मैं आत्मा हूं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और ये शरीर, ये पांच तत्वों या ये जो भी ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उसको भी कंट्रोल करने वाली मैं आत्मा हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाले कौन है? केवल आंख नहीं देखती, आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही है, आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है। जो मैं बोल रही हूं शरीर नहीं बोल रहा है, आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रही है, है ना। तो सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाली मैं आत्मा हूं। और दूसरी बात यह है कि आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है। कई बार हम कहते हैं ना, जब गुस्से में आते हैं, गुस्सा आता है या फ्रस्ट्रेशन आता है, जो भी नकारात्मक ऐसे संस्कार आता है, तो कहते हैं कई बार ये बोलने में आता है कि मेरा संस्कार ही ऐसा है, मैं हूं ही ऐसे, कहते हैं ना। तो अभी ये समझने की बात है कि आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी क्या है। क्या नेगेटिव क्वालिटीज आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी है, या फिर पॉजिटिव क्वालिटीज आत्मा का निजी गुण है? क्या कहेंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, ओरिजिनली आत्मा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या कहेंगे, पॉजिटिव है। ओरिजिनली आत्मा पॉजिटिव है, तो फिर अभी इतने सारे नेगेटिव संस्कार मनुष्यों में क्यों है, क्यों है? हाँ जी, कनेक्शन डिसकनेक्शन हो गया है. ओके जैसे सफेद मैं सुबह नहा धो करके सफेद कपड़ा पहन करके मैं बाजार में निकलूंगी, कुछ खरीदारी करना है, सब कुछ पोल्यूशन में धूल मिट्टी में सब कुछ करते हुए जब शाम को मैं लौटूंगी तो मेरा कपड़ा कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? सुबह जैसा पहना था वैसा रहेगा, शाम को नहीं रहेगा, क्योंकि वातावरण का प्रभाव, पोल्यूशन, मिट्टी, ये कीचड़ा जो जहां भी गई हूं तो वहां से कुछ ना कुछ लगा जरूर होगा. तो इसलिए शाम को जब आएंगे तो वहां कहीं ना कहीं दाग धब्बे लगी हुई होगी. तो ऐसे ही आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटी पॉजिटिव है, लेकिन जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कुछ न कुछ नेगेटिविटी हमारे अपने आत्मा के ऊपर लगी हुई है, उसको हम साफ करने का मेहनत नहीं किया है, तो इसीलिए फिर वो नेगेटिव संस्कार रह गए हैं. तो इसीलिए जब हम साफ करने की मेहनत करते, जब हम कपड़ा देखेंगे शाम को कि मैं यहां दाग लगा हुआ है, यहां दाग लगा हुआ है, ऐसे तो ओरिजिनली ऐसा नहीं है. तो जब हम सोचते वो डिफरेंस जब पता होता है ना, ओरिजिनली ये कपड़ा ऐसा नहीं था सुबह जब पहने थे, लेकिन अभी धब्बा लगा हुआ है, गंदा हो गया है, जब डिफरेंस पता चलता है तो फिर हम मेहनत करते हैं इस दाग धब्बे को निकालने की. लेकिन मैं ये स्वीकार कर लूं ये कपड़ा ऐसा ही था तो फिर मेहनत नहीं करेंगे. जब मैं ये स्वीकार लूं कि हाँ मेरे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, मेरे निजी संस्कार हैं, मेरे निजी गुण हैं, तो फिर हम मेहनत नहीं करेंगे उसको निकालने की, क्योंकि हमें डिफरेंस पता नहीं है. तो इसीलिए समझना जरूरी है आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज जो है वो सतोगुणी कहते हैं आत्मा को, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख और प्रेम है. ये सातों ही गुण आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, पॉजिटिव गुण हैं. लेकिन कहीं ना कहीं इसकी मात्रा जब कम हो जाता है ना, इसके परसेंटेज जब कम हो जाता है, तब उसका विपरीत हम महसूस करते हैं. जैसे शरीर में पानी की मात्रा को कहते 70-75, जो भी मात्रा है, जो भी परसेंटेज है, पानी का परसेंटेज जब कम हो जाता है तो फिर प्यास लगना शुरू हो जाता है. पानी पी लेते हैं, पानी का परसेंटेज जब बराबर हो जाता है तो प्यास नहीं लगता है. तो वो पानी का परसेंटेज इस शरीर में मेंटेन करके रखते हैं तो हम हेल्दी, ये शरीर हेल्दी रहेगा. ऐसे ही आत्मा के अंदर ये सातों ही गुण अगर 100% में हैं, तो फिर अवगुण, उसके विपरीत जो नेगेटिविटी है, वो हम महसूस नहीं करते हैं. जैसे शांति आत्मा का ओरिजिनल गुण है, राइट? तो आत्मा का ओरिजिनल गुण शांति है, तो कैसे पता? अशांति आत्मा का ओरिजिनल गुण नहीं है. क्यों? शांति अशांति अपोजिट बातें हैं, राइट? पीस और पीसलेसनेस. शांति अपना ओरिजिनल गुण है या अशांति हमारा ओरिजिनल गुण है? कौन सी चीज अच्छी लगती है आपको? शांति अच्छा लगता है या अशांति अच्छा लगता है? शांति अच्छा लगता है ना. जो हमारा निजी गुण होता है वो हमें अच्छा लगता है, जो हमारा नहीं है वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. अगर आप गुस्सा करते हैं, गुस्सा आप लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, 5 मिनट कर लिया, 10 मिनट कर लिया, फिर वो फिर ठंडा हो जाता है, है ना। लंबे काल तक वो गुस्सा अशांत हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन शांति हमें प्रिय होने के कारण से लंबे काल तक उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसका परसेंटेज, शांति का परसेंटेज जब कम हो जाता है तो उसका विपरीत अशांति हम महसूस करना शुरू करते। ये कौन सा लॉजिक है, है ना। या अगर एनालॉजी ले कि ये अगर इस कमरे में अगर अंधेरा है तो अंधेरे को मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंधेरे को मिटाने के लिए क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे, खिड़की दरवाजा खोलेंगे या फिर दिया जलाएंगे, कोई ना कोई लाइट का स्रोत हम लेके आएंगे, तब जाकर के अंधेरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि अंधेरा भाग जाओ, अंधेरा भाग जाओ, निकल जाओ। अंधेरे को भगाने की मेहनत हम नहीं करते हैं, प्रकाश लेके आए और अंधेरा ऑटोमेटिक निकल गया, है ना। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी लाइट है, प्रकाश है, नेगेटिविटी अंधेरा है। अंधेरे के डेफिनेशन क्या है, अंधेरे की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस को क्या कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधेरा क्या है, प्रकाश का ना होना अंधेरा है। और प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। लाइट क्या है, एब्सेंस ऑफ डार्कनेस कहेंगे, ये राइट डेफिनेशन है लाइट के लिए, एब्सेंस ऑफ डार्कनेस कहना ये राइट है या रॉन्ग है, ये राइट है या रॉन्ग है। जो राइट कह रहे हैं कि अब अगर जो समझते हैं, लाइट इज द एब्सेंस ऑफ डार्कनेस, प्रकाश अंधेरे का ना होना प्रकाश है। जो ये समझते हैं, हाथ उठाइए प्लीज। कोई गलत और या सही नहीं है, प्लीज जो आपको लगता है तो हाथ उठा लीजिए, कोई बात नहीं। चार पांच हाथ ही उठे हैं, ओके। ये नहीं है, ये गलत है, जो समझते हैं ये गलत है वो हाथ उठाइए। मेजॉरिटी, ज्यादा हाथ इसमें उठे, और जो हाथ नहीं उठाए, किसी में भी नहीं हाथ उठाए, आपको क्या कहना है, किसी ने भी हाथ नहीं उठाए तो आपका क्या कहना है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है अभी, ये है या वो है, ये है वो है, है ना। चलिए थोड़ा एनालाइज करेंगे इस बात को। लाइट का सोर्स है ना, लाइट का सोर्स सूर्य है या बल्ब है या फिर कैंडल है, वो लाइट का सोर्स है। डार्कनेस का कोई सोर्स है, यहां से मुझे अंधेरा मिल रहा है, ऐसा कोई सोर्स है, हाँ? नहीं है। अंधेरे का कोई सोर्स नहीं है, डार्कनेस का लाइट का सोर्स है, लेकिन डार्कनेस का सोर्स नहीं है। इसीलिए लाइट को एनर्जी कहा जाता है, लाइट इज एनर्जी, है ना। तो लाइट को एनर्जी कहा जाता है, डार्कनेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है एक्चुअली, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, लाइट नहीं है तो ऑटोमेटिकली अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हुआ, ऑटोमेटिक अंधेरा हो गया। ऐसा नहीं कि मुझे अंधेरा यहां से मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए लाइट में शक्ति है, प्रकाश में शक्ति है, अंधेरे में कोई शक्ति नहीं है। ऐसे ही पॉजिटिविटी में शक्ति है, नेगेटिविटी में शक्ति नहीं है। शांत आत्मा शांत स्वरूप है। शांति का परसेंटेज जब कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अशांति की अनुभूति हमें होता है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब संस्कार उभरता है जब शांति का परसेंटेज कम हो जाता है। तो अभी ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, अशांति सब कुछ खत्म करना है तो क्या करना होगा? आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है शांति, उसको हमें महसूस करना होगा। वी हैव टू गो बैक टू आवर सोर्स, ओरिजिनल सोर्स में जब हम महसूस करना शुरू करते ऑटोमेटिकली ये जो अवगुण है वो भागना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब ये परसेंटेज में कम हो जाता है, जैसे ज्ञान कम हो जाता है, तो डाउट्स, ब्लाइंड फेथ, ईगो, ये सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब पवित्रता की कमी होती है तो फिर वेस्ट थॉट्स, नेगेटिविटी, ये सब कुछ गंदी चीजें, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। और फिर स्नेह, प्यार की कमी होता है, सेल्फिशनेस का बढ़ना शुरू हो जाता है, स्वार्थ बढ़ना शुरू हो जाता है। शांति जब कम होना शुरू हो जाता है, एंगर, टेंशन, फियर, ये सब बातें बढ़ना शुरू हो जाता है। जब खुशी, सुख जब कम होता है तो फिर ग्रीड, जलसी, ये सब कुछ बढ़ता है। जब आनंद कम होता है तो फिर अटैचमेंट, क्योंकि मुझे यहां से आनंद चाहिए, आत्मा ओरिजिनली आनंद स्वरूप है, वो महसूस ना करने के कारण से मैं अपने आनंद के लिए मैं दूसरों पर डिपेंड करना शुरू करती हूँ। इधर वस्तु के ऊपर या फिर व्यक्ति के ऊपर मैं डिपेंड होना शुरू हो जाती हूँ। और शक्ति, आत्मा ओरिजिनली शक्ति स्वरूप है, लेकिन ओरिजिनल शक्ति कम होने के कारण से फिर मैं अपना शक्ति क्या किस में देखती हूँ? मजल पावर में देखती हूँ, पोजीशन के पावर में देखती हूँ। तो इन बाहरी पावर्स के ऊपर मैं निर्भर होना शुरू हो जाती हूँ। तो इसीलिए जब मैं इन सातों ही गुणों में मैं स्थित होती हूँ तो ये सारे नेगेटिविटी मेरे से दूर होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तो इसको हम महसूस कैसे करें? महसूस करने के लिए हमें ये समझना होगा कि आत्मा अंदर कार्य कैसे करती है। जैसे इस शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स से कार्य करते हैं, तो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं शरीर के। ऐसे ही आत्मा के तीन ऑर्गन्स हैं, या फैकल्टीज कहें, या ऑर्गन्स, कर्मेंद्रियां हम कह सकते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन में आप देखते हैं कि ये लहर दिखाई दे रहा है कि मन में हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, विचारों की उत्पत्ति होता है ना? तो लगातार एक के पीछे एक थॉट्स आते जरूर है। तो मन से हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं, एनालाइज करते, तर्क करते हैं, वह तराजू दिखाए हैं। विचार तो बहुत आते होंगे, थॉट्स तो बहुत आते होंगे, लेकिन चार पांच अगर थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है, चार ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने बुद्धि से डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि इन चारों में से मुझे ये करना है, तो बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो थॉट्स है वो सबसाइड हो जाते, जो हमने निर्णय लिया वो हम कर्म करते हैं। जैसे आप यहां आने से पहले जब आपको इनविटेशन मिला यहां आने के लिए, तो आप बहुत विचार चला कि जाना है कि नहीं जाना है, क्या प्रोग्राम है, ये सब कुछ बहुत विचार चला कि द्वंद्व चला कि जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन फिर आपने डिसाइड किया जाना है। डिसाइड करने के बाद ये सारे जो थॉट्स है वो फिर शांत हो गए। जब डिसाइड किया, डिसाइड कर लेने के बाद फिर आपने कदम उठाए, रिजर्वेशन कराया यहां आने के लिए, तो कर्म में वो परिवर्तन किया और फिजिकली आप यहां आए। जो भी हम निर्णय लेते हैं वो कर्म में परिवर्तन हो जाता है। जब कर्म में परिवर्तन हो गया तो वो कर्म जब रिपीट होता है तो फिर संस्कार बनता है। गुस्सा, बार बार गुस्सा किया, गुस्से का संस्कार पक्का हो गया, है ना। स्नेह से बात करना शुरू किया, कर्म में वो बार 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 करने से वो संस्कार पक्का हो जाता है। तो ये संस्कार या इंप्रेशन हमारे अंदर होता है। तो मन में जो विचार चलते हैं तो उसका सोर्स क्या है? तो सेंसरी इनपुट्स होते हैं कर्म, ये जो कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, उसके आधार से हम सोचना शुरू करते हैं, या बिलीफ सिस्टम होता है, मान्यताएं हैं, या पास्ट मेमोरीज है, या क्रिएटिविटी है, उसके आधार से हम सोचना शुरू करते हैं। और विचारों में से भी चार प्रकार के विचार है। एक है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच, दूसरा है नकारात्मक सोच, तीसरा है व्यर्थ सोच, और चौथा है आवश्यक सोच। तो जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं मन की शक्ति इतना ज्यादा बढ़ना शुरू होता है, नेगेटिव जितना सोचते हैं उतना एनर्जी कम होता है। व्यर्थ सोच क्या है? पॉजिटिव जितना अच्छा भी नहीं है, नेगेटिविटी जितना बुरा भी नहीं है, व्यर्थ अनावश्यक, जो बिना कारण बिना कुछ ऐसे कोई रिजल्ट, तो वो है अनावश्यक पास्ट के बारे में सोचना, अनावश्यक भविष्य की चिंता करना, ये सब वेस्ट थॉट्स हैं। और नेसेसरी थॉट्स आवश्यक, जो कर्म के प्रति, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति जो हम सोचते हैं, यहां जाना है, ये फाइल सबमिट करना है, इसका हियरिंग सुनाना है, तो जो भी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति हम सोचते हैं वो है नेसेसरी थॉट्स। इन चारों में से पॉजिटिव थॉट्स जितना बढ़ता जाएगा उतना आत्मा मन की शक्ति बढ़ती जाएगी। और सेकंड फैकल्टी है निर्णय करने की शक्ति, इंटेलेक्ट या फिर बुद्धि, बुद्धि जिसको कहते हैं, जो हम निर्णय करते हैं, ये डिसीजन मेकर है, जो डिसर्न करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिसाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये सब बुद्धि का काम है, जो फिल्टर का काम करता है। जो बहुत सारे विचार आए लेकिन बुद्धि फिल्टर कर ले, डिसीशन ले लिया, वो फिल्टर हो गया, वो जो फिल्टर हुआ तो वो फिर कर्म में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए माइंड इज लाइक अ हॉर्स एंड इंटेलेक्ट एज हॉर्स राइडर, है ना। मन को भी कंट्रोल हम कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा, जितना हम अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखते हैं तो हम मन को भी कंट्रोल हम कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। ये प्रक्रिया कैसा चलता है? मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को क्लीन रख सकते हैं और बुद्धि को क्लियर रख सकते हैं। जितना हम मेडिटेशन करते जाएंगे मन को हम देखना शुरू करते हैं, मन को मन देख करके हम उसको नेगेटिव अगर सोच है या वेस्ट विचार है उसको पॉजिटिविटी के तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, और इसलिए मन क्लीन होता जाएगा, इसलिए मनोबल बढ़ता जाएगा मेडिटेशन के द्वारा, और बुद्धि क्लियर होता जाएगा। क्लियर क्लैरिटी जब होता है तो डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाता है। डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट क्यों होता है? जब क्लैरिटी ना हो, जब कंफ्यूजन होता है तो डिसीजन करना लेना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए बुद्धि को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात है संस्कार, वो रिकॉर्ड है आत्मा के अंदर, रिकॉर्डेड है जो भी हमने कर्म किया हुआ है अभी तक, ना केवल इस जन्म में लेकिन पिछले जन्मों का भी, वो रिकॉर्ड संस्कार के रूप में आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। अगर देखा जाए कि आत्मा के अंदर कितने प्रकार के संस्कार हैं, इतने सारे यहां लोग बैठे हुए हैं, हर एक का संस्कार अलग अलग है, एक का संस्कार ना मिले दूसरे से, हर एक का संस्कार अलग अलग है क्योंकि हर एक का कर्म अलग अलग है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, अभी एक दिन का बच्चा है या फिर एक घंटे का बच्चा है ले लीजिए, उस कोई एक बच्चा अमीर घर में जन्म लेता है, कोई बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है, कोई मतलब स्पेशली वो जो चैलेंज बच्चा पैदा होता है या कोई तंदुरुस्त बच्चा पैदा होता है, इतने सारे डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस क्यों है? कोई अमीर घर में क्यों जन्म ले रहा है, कोई गरीब घर में क्यों जन्म ले रहा है? कारण क्या है? कारण क्या है? इंप्रेशंस। वो कहा क्या? क्योंकि एक दिन का बच्चा, एक घंटे का बच्चा, कुछ कर्म ही नहीं किया है बेचारे ने, है ना? हम अगर कहें भाग्य कर्मों का फल है, तो अभी उस बच्चे ने कुछ कर्म ही नहीं किया है तो जो भाग्य वो महसूस करे। लेकिन वो बच्चा भाग्य कहां से लेके आया? कहां से लेके आया? पास्ट बर्थ, पिछले जन्मों में जो भी उसने कर्म किया है उसके आधार से वो बच्चा किस घर में पैदा होना है वो डिसाइड होता है अपने कर्मों के आधार पर, है ना? कोई अभी 5 साल का भी नहीं हुआ, 2 साल 3 साल हुआ है तो अच्छा, बहुत अच्छा, उसके अंदर क्वालिटीज होता है, कोई शास्त्रार्थ कर रहा है, कोई ना कोई, इतने सारे क्वालिटीज उस बच्चे के अंदर होता है, इस जन्म का नहीं, वो पिछले जन्म से वो बच्चे ने कैरी किया हुआ है तो अभी उसके अंदर दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है एक और उसको उसमें एडअप हो जाता है, वो है जेनेटिकल संस्कार, जो माँ बाप से जीन्स के द्वारा उसको जो प्राप्त होता है, पेरेंटल माँ बाप के द्वारा जो प्राप्त होता है, तो वो एडअप हो जाता है पास्ट संस्कारों के साथ साथ। और फिर तीसरे प्रकार का है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कहते हैं ना, वातावरण से जो हम उठाते हैं, फ्रेंड्स से जो हम उठाते हैं, जो वातावरण से हम उठाते हैं वो हमारा संस्कार बनना शुरू हो जाता है, चाहे वो लोगों से, परिसर से या फिर मीडिया से, जिसको हम ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करते हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ना शुरू हो जाता है। और फिर प्रेजेंट कर्म, जिसके आधार से हम कर्म करना शुरू करते हैं उसका भी एडप होना शुरू होता है, राइट? और फिर एटर्नल संस्कार, जो अनादि अविनाशी संस्कार है आत्मा का, ओरिजिनल जो है शुद्ध पवित्र और सशक्त आत्मा का संस्कार है, जो नेगेटिव, जिसमें कुछ प्रकार के नेगेटिविटी या वेस्ट है ही नहीं अभी तक, जो भी हमारे संस्कार है, क्योंकि हमने कैरी ऑन किया हुआ है आइदर पांच जन्मों से, या फिर इस जन्म के पेरेंट्स से, या फिर परिसर से, या फिर अपने खुद के कर्मों से, इस जन्म के कर्मों से, ये चारों ही प्रकार के अक्यूमुलेट हो गया है, जमा हो गया है आत्मा के अंदर। अभी क्या करना है, हमें पांचवे प्रकार के जो संस्कार है, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने शुद्ध संस्कार, जो ओरिजिनल संस्कार है, पवित्र और शक्तिशाली संस्कार, वहां तक हमें पहुंचना है। इन सभी बातों को, नेगेटिविटी को, व्यर्थ को हम साफ कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो ये लक्ष्य है मेडिटेशन का, क्योंकि कई बार ये सोचते हैं ना, मेडिटेशन करना क्यों है, मन की शांति के लिए, या फिर शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हमें मेडिटेशन करना, ये सब बाय प्रोडक्ट्स है, ये सब कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन अल्टीमेट गोल जो मेडिटेशन का है वो है अपने इटर्नल संस्कार तक पहुंचना, नेचुरल बन जाना। ये जो सातों ही गुण है वो हमारा नेचुरल बन जाए, कोई मेहनत में, शांति मेरा नेचुरल बन जाए, प्रेम मेरा नेचुरल बन जाए, शक्ति मेरा नेचुरल संस्कार बन जाए, तो वो है लक्ष्य मेडिटेशन करने का। तो इसीलिए ये जो चलता है मन बुद्धि संस्कार, ये सारा साइकिल से चलता है ना। मन में जो भी विचार चलते हैं उसके आधार से मैं बुद्धि से निर्णय लेती हूं, ये साइकिल आप देख रहे हैं, बुद्धि से मैं जो निर्णय लेती हूं वो फिर शरीर से मैं कर्म करती हूं, कर्म फिर संस्कार बन जाता है, और फिर संस्कारों का प्रभाव फिर मन पर पड़ता है, क्योंकि संस्कार मेरा गुस्सा वाला है तो वही संस्कार, वही विचार चलते हैं, तो संस्कार का प्रभाव फिर विचारों पर पड़ता है। तो इसीलिए ये साइकिल है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट को बदलना है तो स्टार्टिंग को बदलो, एंडिंग बदल जाएगा, लेकिन यहां साइकिल है ना। तो अभी परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन करना है, आत्म परिवर्तन करना है, तो कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें, क्योंकि ये साइकिल है, मन का प्रभाव बुद्धि पर है, बुद्धि का प्रभाव फिर कर्मों पर है, कर्मों का प्रभाव संस्कार पर है, संस्कारों का प्रभाव फिर मन पर है, ये साइकिल है ना। तो स्व परिवर्तन करना है तो कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें, मन से, है ना, मन से शुरू करना है, लेकिन मन के ऊपर प्रभाव तो संस्कारों का है ही है, तो संस्कारों का प्रभाव बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत जन्मों का संस्कार है ना, वो नेगेटिव संस्कारों का प्रभाव मन पर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें ये भी समझना है उस प्रभाव को कम भी हम कर सकते हैं, जब हम ये समझेंगे मन पर प्रभाव और तीन चीजें कौन कौन से डालते हैं। मन पर तीन और चीजों का प्रभाव डलता है, वो है जिन इन आंखों से जो भी हम देखते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स का प्रभाव जो दिखाया था, तो इन आंखों से जो भी हम देखते हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, इन कानों से जो भी हम सुनते हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, क्योंकि ये दरवाजे हैं मन तक पहुंचने के लिए, आंख, कान, और तीसरा दरवाजा है भोजन, जैसा अन्न वैसा मन, कहते हैं ना, जो इनपुट है, ये जो बोलना ये तो आउटपुट है, इनपुट क्या है, मुख से जो ले रहे हैं वो है भोजन ग्रहण करते हैं, राइट। तो इसलिए तीनों को जब हम फिल्टर करते हैं, जो हम देख रहे हैं इन आंखों से, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव है, इसको हमें फिल्टर करना होगा। जो हम सुनते हैं, क्या हम पॉजिटिव सुन रहे हैं, इसको फिल्टर करना होगा, है ना। और फिर जो भोजन ग्रहण कर रहे, क्या वो सात्विक भोजन है। तो तीनों का प्रभाव मन पर पॉजिटिव और पावरफुल प्रभाव डालने के कारण से जितना भी नेगेटिव संस्कार भले हो, पिछले जन्मों का जो भी चार प्रकार के संस्कार नेगेटिव भले हो, लेकिन उसको मिटा सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ अपना नहीं है, पराया चीज है। वी हैव अक्वायर्ड देम फ्रॉम आउटसाइड, ओरिजिनल संस्कार नहीं है, उसको हम मिटा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव संस्कार के प्रभाव को मिटाने के लिए इन तीन दरवाजों को हमें बार बार कंट्रोल करने की जरूरत है। इसीलिए जितना हम सोल कॉन्शियस स्थिति को अनुभव करते जाएंगे, उतना वो पक्का होता जाएगा। तो इसीलिए चलते फिरते काम करते बार बार ये महसूस करें कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अगर मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तो ये अलग अलग जो हमारा लेबल्स हैं, अगर एक महिला है वो एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक पत्नी भी है, अगर ये प्रोफेशन लॉयर का प्रोफेशन कर रही है, अगर वो एडवोकेट भी है, तो ये अलग अलग रोल्स वो निभा रही है, राइट। तो ये इसमें इसको देखे कैसे, ये क्या फिर गलत है, ये जो भी हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं एक महिला हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, मैं एक पुत्री हूं, मैं एक पत्नी हूं, या एक मैं आत्मा हूं, क्या है, क्या है, इन सभी बातों में सच क्या है। तो ये अगर मैं आत्मा हूं, तो ये जो भी हम कह रहे हैं कि मैं एक स्त्री हूं, मैं पत्नी हूं, पुत्री हूं, एडवोकेट हूं, ये क्या है मेरा फिर, ये भी तो सच है ना, ये भी तो सच है ना, क्या है ये, मैं एक आत्मा हूं, ये ओरिजिनल है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, जेंडर किसको है, शरीर को है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, शरीर को जेंडर है, स्त्री या पुरुष का, है ना। और ये जो भी मैं कर रही हूं, ये मुझ आत्मा का रोल है, पार्ट है। मैं दो बच्चों की मां हूं, सारे संसार की मां नहीं हूं, है ना। पत्नी हूं और इन मां बाप की पुत्री हूं, सब दुनिया के पुत्री नहीं हूं, राइट। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग संबंध में आत्मा निभा रही हूं, वो मेरा रोल है। इस जन्म में मुझे ये दोनों मां बाप मिले हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो आत्मा है, है ना। जब हम इस समझ के साथ जब हम व्यवहार करते हैं ना, मैं आत्मा हूं लेकिन ये मेरा रोल है, वो भी आत्मा है, लेकिन इस जन्म में इस संबंध के साथ मुझे मिले हुए हैं, लेकिन ओरिजिनली आत्मा है, जो वो शिफ्ट करने की जरूरत है। जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हमारे आप देखना संबंध सुधरना शुरू हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना शुरू हो जाता है कि आत्मा टू आत्मा कनेक्शन है ना, अभी शरीर टू शरीर कनेक्शन नहीं है, आत्मा का आत्मा के साथ जब कनेक्शन जुड़ता है वह एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाता है। आप देखना आपकी एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका संबंध सुधरना शुरू हो जाता है। अपने आप को आत्मा समझ करके, केवल रोल समझ करके उस रोल को हमें निभाते चलना है। तो इसीलिए अपने कॉन्शियसनेस को, अपने अवेयरनेस को बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस में शिफ्ट करना जरूरी है, देह भान से आत्म भान में शिफ्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब देह भान में होते हैं तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो जाता है, ये अच्छे हैं, ये गोरे हैं, ये स्मार्ट है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, है ना, तो ये कंपैरिजन करना होना शुरू हो जाता है। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में एक्सेप्टेंस है ना, वहां कंपैरिजन नहीं है, और देह भान में डिवाइड हो जाता है, ये हिंदू है मुसलमान हो, ये फलाने देश वाला है तो मैं फलाने देश वाले, तो डिवीजन शुरू हो जाता है। लेकिन आत्म भान में यूनाइटेड, हाँ सभी सितारे हैं, धरती के सितारे हैं, आकाश में देखते हैं तो वो सितारे दिखाई देते एक जैसे हैं, कोई प्रकाश ज्यादा है किसी में, किसी में प्रकाश कम है बस, लेकिन हम धरती के सितारे हैं। और फिर देह भान में होते हैं तो कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, उसके वशीभूत होने के कारण से बहुत सारे कुकर्म, बहुत सारे गलत कर्म अपने से हो जाता है। सोल कॉन्शियसनेस में सर्व कर्मेंद्रियों के मैं मालिक हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, जो मैं करना चाहूं इन कर्मेंद्रियों से मैं कराऊंगी, कर्मेंद्रिय अधीन नहीं लेकिन कर्मेंद्रियों पर मैं राजा हूं। और फिर देह भान में मृत्यु का डर होगा, एक दिन मैं मर जाऊंगी, लेकिन आत्म भान में मुझे पता है कि आत्मा अनादि अविनाशी है, आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है, और ये रियलिटी है, एक ना एक दिन इस कॉस्ट्यूम को मुझे त्यागना होगा, ये मेरा टेम्पररी एड्रेस है, कुछ सालों के बाद मुझे नेक्स्ट एड्रेस में जाना है। जब वास्तविकता को एक्सेप्ट करते हैं तो मृत्यु का डर नहीं होगा। और लास्ट है कि जैसे जब हम बायोडेटा कहीं भी फॉर्म्स फिल करते हैं ना, बायोडेटा करते हैं तो उसमें कुछ चीजें अपना परिचय लिखते हैं, नाम क्या है, फोटो ले डालते हैं, ये सब। तो ऐसे ही आत्मा का अगर सार में, जो अब आज हमने सुना एक घंटा, तो उसका सार क्या है आत्मा का, ये जो शरीर का नाम लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, नाम क्या है, आत्मा, रूह, स्पिरिट, प्राण, कोई भी कुछ भी कहे, आत्मा का नाम क्या है, आत्मा, रूह, स्पिरिट या फिर प्राण, और आत्मा का फॉर्म, रूप, फोटो डालते हैं ना अपना, कैसे दिखती हूं वो फोटो डालता है एप्लीकेशन में, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का रूप क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट है फॉर्म। और माता पिता का नाम फिर कल आपको पता चलेगा, है ना, ये जो भी माता पिता है शरीर के माता पिता है ना, आत्मा के माता पिता परमात्मा है ना। एड्रेस क्या है आत्मा का, एड्रेस में भी परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस लिखा जाता है ना, तो आत्मा का टेम्पररी एड्रेस कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है, टेम्पररी एड्रेस ये है इस शरीर में, अभी यहां टेम्पररी हूं, कुछ सालों के बाद इसको मुझे त्यागना होगा, नए मकान में मुझे जाना होगा, है ना। ये मेरा टेम्पररी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस क्या है? परमानेंट एड्रेस परमधाम। इसलिए कहते हैं ना, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। कहां से आए हैं? परमधाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, जो आत्माओं का निवास स्थान है, परमात्मा का निवास स्थान है, वो मेरा परमानेंट एड्रेस है। वहां से आए हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, फिर वापस वहां जाना है। और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो लिखते हैं वो शरीर का हो गया ना, आत्मा का डेट ऑफ बर्थ वो अनादि अविनाशी है, है ना। उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ है ही नहीं, वो अनादि अविनाशी है। और क्वालिफिकेशन क्या है आत्मा का? सात गुण के बारे में देखा ना, सतो गुणी है आत्मा। आत्मा के क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन किसको कहा जाता है? जो मैं कर सकती हूं। अगर आप स्टडी किए हैं LLB LLM जो भी, अब यू क्वालिफाइड है वो काम करने के लिए, क्योंकि वो उसके बारे में समझ है, उसके आधार से आपका क्वालिफिकेशन माना जाता है। और आत्मा के ओरिजिनल क्वालिफिकेशन है, जिसके आधार से आत्मा कर्म करती है, वो है सात गुण। उन गुणों के आधार से आत्मा कर्म करती है। ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन क्या है आपके लिए कहा जाता है? क्वालिफिकेशन आपका LLB LLM है, ऑक्यूपेशन है आपका एडवोकेट है, जज है, जो भी है आपका ऑक्यूपेशन, राइट। तो आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? किसके लिए जन्म लिया है? फिर सिर्फ खा पी करके, मौज करके एक दिन शरीर छोड़ना है? ऑक्यूपेशन क्या है आत्मा का? श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरों को भी उसको महसूस कराना, क्योंकि जो भी है एक्सपीरियंस ही सब कुछ है ना, क्या लेके जाएंगे इस मोमेंट में? अगर मैं अच्छा महसूस करा रही हूं किसी को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रही हूं, पॉजिटिव कुछ ऐसे दे रही हूं, तो फिर वो मेरा भाग्य बन रहा है ना। यही दान पुण्य है, जो अच्छा महसूस कराए, दूसरों को सुख दे, दूसरों की मदद करे किसी ना किसी रूप से। इन सातों ही गुणों को दूसरों के साथ शेयर करना मेरा ऑक्यूपेशन है, ताकि दूसरे भी उस लेवल तक पहुंचे, है ना। ये है अपना ऑक्यूपेशन, ठीक है। पूरा ये है सार आज के इस सेशन का। कुछ डाउट्स है? कुछ क्वेश्चंस है? जरूर कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे आप सेशंस अटेंड करेंगे तो आपके डाउट्स शायद क्लियर होता जाएगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो किसी ना किसी से आप पर्सनल मिल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए थोड़े समय के लिए मेडिटेशन करते हैं। जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आप सोचते जाएंगे, विजुलाइज करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए जैसे आत्मा के तीन ऑर्गन्स हैं, वैसे तीन शक्तियों को यूज करते हुए मेडिटेशन करना है। मन के द्वारा सोचना है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना है, और बुद्धि से विजुलाइज करना है। जैसे तीसरे आंख कहते हैं बुद्धि को, यहां बैठे बैठे आप कुछ भी विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आपको कहे कि सागर के किनारे अपने आप को देखिए। आप उस बुद्धि के द्वारा आप विजुलाइज कर सकते हैं, अपने आप को सागर किनारे देख सकते हैं। बुद्धि में ये शक्ति है, ताकत है। और तीसरा है महसूस करना, फील करना। अगर मैं कहूं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो शांति को महसूस करना, फील करना, ये तीनों ही शक्तियों को यूज करते हुए अभी हम मेडिटेशन करते हैं। चलिए सीधा बैठ जाए। आसपास के वातावरण से, आवाजों से अपने मन और बुद्धि को किनारा करें, विड्रॉ करें और भ्रुकुटी के मध्य में फोकस करें। मन के स्क्रीन पर अपने आप को देखने की कोशिश करें। मैं आत्मा चमकता हुआ अजब सितारा, भ्रुकुटी के मध्य में, ब्रेन के बीचों बीच मैं आत्मा विराजमान हूं। बुद्धि के आंख से अपने आप को देखे, सचमुच ब्रेन के बीचों बीच मैं चमकता हुआ सितारा बैठी हुई हूं। अनादि अविनाशी शक्ति हूं। वहां विराजमान होकर इस शरीर रूपी वस्त्र को मैं पहनी हुई हूं। इस शरीर को मैं चला रही हूं। मैं आत्मा मालिक हूं, राजा हूं। जैसे गाड़ी से ड्राइवर अलग है, रथ से रथवान अलग है, ऐसे मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। अलग होते हुए भी इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा मालिक हूं। इन आंखों से मैं आत्मा देख रही हूं। इन कानों से मैं आत्मा सुन रही हूं। इस मुख के द्वारा मैं आत्मा बोल रही हूं। अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा अलग अलग कर्म कर रही हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकल रही है और ये महसूस करें ब्रेन के बीचों बीच आत्मा स्थित होकर के पूरे ब्रेन में मैं शांति के प्रकंपन फैला रही हूं। धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस शांति के पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं शांत शीतल होती जा रही हूं। मेरे शरीर के रोम रोम प्रकाशित होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शीतल होता जा रहा है। धीरे धीरे शांति के प्रकंपन मैं पूरे इस हॉल में फैला रही हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। दूसरों को भी इस समझ के साथ मैं देख रही हूं, जैसे मैं अनादि अविनाशी आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूं, वैसे अन्य लोग भी आत्माएं हैं ओरिजिनली, वो आत्माएं भी शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। ॐ शा